जब भी बेगम अख्तर के चाहने वाले उनकी ये गजल सुनते थे, वो एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते थे। वहां सिर्फ एक ही चीज माने रखती थी, उनकी हीरे की नाक की लौंग की चमक और उनकी अद्वितीय आवाज। किस्सा यह है कि एक बार उनकी मां मुश्तरी बेगम उन्हें बरेली के पीर अजीज मियां के पास लेकर गईं। पीर ने उनसे अपनी गजलों की किताब खोलने को कहा। उन्होंने जिस पन्ने पर हाथ रखा, उस पर बहजाद लखनवी की ये गजल लिखी थी। पीर ने कहा कि अगली रिकॉर्डिंग में इस गजल को सबसे पहले गाना। बेगम अख्तर ने यही किया और पूरे भारत ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बेगम अख्तर ने उर्दू के सभी महान शायरों के साथ साथ उस समय के उभरते हुए शायरों को भी गाया। जिगर मुरादाबादी भी उनमें से एक थे। बेगम अख्तर की शिष्या शांति हीरानंद कहती हैं कि जिगर के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था और वो उनसे खुलेआम फ्लर्ट करती थी।
जिगर साहब आते थे रहने के लिए वहाँ, उनकी बेगम भी आ जाती थी, मोटी सी, लाल लाल बाल उनके गरारा पहने हुए, काली सी, खुद तो बहुत ही बदसूरत थे। अलग से कमरे में वरंदा अलग, वो सब कुछ उसमें रहते थे। वो बहुत खातिर करती थी और वो गज़लें भी देते थे इनको लिख। जिगर की गज़ल किसका ख्याल कौन सी मंजी मुझे बहुत अच्छी लगती। इसका भी एक किस्सा है कि जिगर साहब ने उनको ये गज़ल दी, उन्होंने धुन बनाई दरबारी में और गाया, तो जिगर साहब जो थे उनको तो दौरा पड़ गया उसी वक्त। वो सब गाना वाना रुक गया, वो अस्पताल पहुंचाए गए। एक दफ़ा कहने लगी उनसे कि मियाँ, अगर हमारी आपकी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता, आपकी शायरी हमारे और हमारी आवाज़। तो कहने लगे बीबी, अगर उल्टा होता तो। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे।
बेगम अख्तर चेन स्मोकर थी। प्रोफेसर सलीम किदवई उन्हें नजदीक से जानते थे और उनके आखिरी दिनों में उनके बहुत करीब थे।
दिल्ली में इन्होंने हमसे कहा सिगरेट पीते, हमने कहा जी हाँ पीते, मगर आपके सामने नहीं पियेंगे। हमारे वाले अस्पताल तो देखने आई तो बहुत बड़ा बास्केट फलों की बहुत अच्छी तरह से अरेंज्ड और बीच में चार डिब्बी सिगरेट हमारे लिए, वहाँ उनके साथ रह रहे थे हॉस्पिटल में। तो इस किस्म के बहुत लाइवली इंसान थी, फिक्र बहुत थी वालिद की, मगर साथ साथ उनको हमारी भी फिक्र थी कि सिगरेट वहाँ पीने को नहीं मिल रही होगी।
सिगरेट से जुड़ा ही एक दिलचस्प किस्सा शांति हीरानंद बताती है। एक बार वो ट्रेन से महाराष्ट्र से गुजर रही थी, रात को अचानक उनकी सिगरेट खत्म हो गई।
रात के 2 बजे कहने लगी बिटन वो सिगरेट खत्म हो गया, अब कैसे करें। अब उनको थी हुक सिगरेट की, अब कैसे कैप्टन पिया करते नहीं। तो एक छोटे स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कहने देखो है कोई दुकान, हमने कहा तो अंधेरा ही, हट तुम बौका कहेंगी, अपने खड़ी हो गई उस जमाने में। और वाकई में अंधेरा था, कुछ था ही नहीं, पर गार्ड खड़ा था पीछे दूर, उसको बुलाया अरे मेरे भैया अरे मेरे, वो दौड़ा दौड़ा है, उसने सोचा कि कोई परेशानी होगी। कह लेंगे बेटा यहाँ कहीं सिगरेट मिलेगी, उसने कहा कोई था महाराष्ट्रन का, ना यहाँ सिगरेट नहीं मिलता, ऐसा बोला। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे जीते रहे हैं, तुम्हारा ये हो तुम्हारा वो हो। वो बेचारा हक्का बक्का ही रह गया, उसकी झंडियाँ दोनों ले ली, उसकी लैंटर्न पकड़ ली और 200 रुपये उसको पकड़ा दिए। अब वो क्या करता, वो दौड़ा दौड़ा बाहर गया स्टेशन, वहाँ से कहीं पान वान की दुकान होगी, वहाँ से लेके आया सिगरेट, तब उसको इतनी दुआएँ दी और तब गाड़ी चली।
ये न थी हमारी हमारे के विशाल यार होता।
बेगम अख्तर की एक और शिष्या रीता गांगुली कहती हैं कि वो हमेशा कहा करती थीं कि सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती। एक बार रीता गांगुली और बेगम अख्तर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गोपाल रेड्डी के निमंत्रण पर नैनीताल के राजभवन गई।
नैनीताल का बहुत खूबसूरत झील है, तो हम बोले अम्मी चलते हैं, हम तो वो तमाम जगह ले गई, इधर उधर घुमाई। मैंने कहा नाव में नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि उनको पानी से थोड़ा डर था, तो बहरहाल हम जाके बैठे, और बैठे तो जो माछी है उसको समझ में आ गया भाई गवर्नर हाउस से वो झंडे वाला गाड़ी से कोई बैठे हैं। उसके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर था, विच नेचुरली ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ। बीच झील में जाके उसने बजाया, और वो बज रहा था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुम। तो मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने उस माझी को कहा अरे क्या करो हिमाकत, बंद करो बंद करो, तुम्हें पता भी है कौन बैठी है। अम्मी अचानक बोले क्यों बंद करा रही हो बेटा, वाह 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 क्या आवाज है, क्या नाम है इस लड़के का। मैंने कहा अम्मी ये किशोर कुमार हैं। बोले वाह वाह क्या कहने, क्या ऊपर से तरता तररा, ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, और क्या गाया इस लड़के ने। बेटा कभी कुछ भी चीज सुनना जाया नहीं जाता है। उसी दिन शाम को नैनीताल क्लब में एक प्रोग्राम था, गवर्नर साहब ने रखा था, एक मैखाना है बज में जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो उसका तर्ज कुछ और था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये मैखाना है बज में जम नहीं है यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, यानी चलिया तो चलिया, उसको इस्तेमाल कर लिया और लोग झूमने लगे। उनको क्या पता एक्चुअली रेफरेंस क्या है।
शांति हीरानंद बताती हैं कि एक बार जब वो मुंबई सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हो रही थीं, तो उनको स्टेशन छोड़ने आए शकील बदायूनी ने उन्हें एक चिट पकड़ाई।
जैसे स्टेशन से गाड़ी अभी जाने वाली थी बम्बई से, तो शकील साहब भागते भागते आए, सांस फूली, बेगम साहब ये गजल मैंने आपके लिए लिखी है। उन्होंने कहा अच्छा शकील, उठा बैग में रख लिया। अब क्या हुआ कि भूल गई, और उनकी आदत ये थी कि वो जब सफ़र करती थी तो उनको ये रहता था कि सारा डब्बा खाली रहे, कोई और दूसरा ना हो, ताकि वो आराम से सिगरेट पी सकें, लेट सकें बेतकल्लुफ़ी से। तो सुबह जब हुई और भोपाल आया, तो भोपाल में उन्होंने चाय मंगवाई, पी कह लेंगे बिटिया वो गज़ल दी थी उसने। शकील ने जरा देखूँ, निकाला बैग, खोला उसमें से वो पर्चा निकाला और पढ़ा, उसको देखा। उसके बाद कह लेंगे वो बाजा निकालना, छोटा सा बाजा था, कन्वर्टेबल था, नीचे बैठ छोटा सा, उसको निकाला, उस पर उंगलियाँ उन्होंने फिराई और ये ऐ मोहब्बत पैदा हुई।
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों
कुमार गंधर्व और कैफी आजमी से भी बेगम अख्तर की काफी दोस्ती थी। जब भी कुमार गंधर्व लखनऊ आते, बेगम अख्तर के यहाँ ही ठहरते। फिराक गोरखपुरी भी उनके कदरदानों में से एक थे। एक बार वो दिल्ली के एक होटल में ठहरे हुए थे।
आखिरी वक्त में हमको याद है दिल्ली में वो बहुत बीमार थे, मतलब उठ नहीं पा रहे। एयरलाइंस होटल जब हुआ करता था पहाड़गंज में, उसमें वो ठहरे थे। ये निरुला में थी, तो मैं गई तो कहने लगी बिटिया फिराक बहुत बीमार हैं, उनको मिलना चाहिए। उनका फोन भी आया था, टैक्सी मंगाई, पहुंच गए हम लोग, तो वहाँ उनका वो नौकर था, वो लेटे हुए थे, हम थे और अम्मी थी। उन्होंने गजल दी इनको, शाम गम कुछ इस निगाह नाज की बातें करो, कहेंगे आप गुनगुना दीजिए। तो उन्होंने देखा गजल और उन्होंने इस तरह गुनगुनाया, शाम गम कुछ इस निगाह नाज की बातें करो। बस उनके आंखों से आंसू निकलने लगे, आपने मेरी गजल को आज जिंदगी दे दी।
Bye.
नामी संगीतकार मदन मोहन के लिए भी बेगम अख्तर के मन में बहुत स्नेह था। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें मदन मोहन ने ही हारमोनियम सिखाया था। रीता गांगुली याद करती हैं।
कोई भी गायिका है उस वक्त की हारमोनियम नहीं बजाती थी, सारंगी से उनकी तालीम होती थी और सारंगी के साथ ही गाया करते थे। बेगम अख्तर उस जमाने की एकमात्र गायिका जो खुद हारमोनियम बजा के गा लेती थी, और ये हारमोनियम की तालीम उनको मदन मोहन जी ने दी थी। और मदन मोहन जी के मन में उनके लिए बहुत इज्जत था। जब भी वो जाती थी, उनमें एक दो चार चीज़ें थी, जैसे कलकत्ता जाएं, आप ताज बंगाल में ठहराना चाहें वो नहीं ठहरेंगी, वो होटल ब्रॉडवे में ही ठहरेंगी। अगर अब वो बम्बई गई और ताज महल होटल में उनको रूम बुक्ड है, स्वीट बुक्ड है, किसी को और भेज देती थी, खुद जाके साउथ सी ग्रीन होटल में, मरीन ड्राइव में, उसी में रहती थी। तो वहाँ वो हर बार मदन मोहन जी आ जाते थे अपना हारमोनियम लेके, ऊपर अम्मी बैठती थी और उनके पैर के पास मदन मोहन जी बैठते थे और वो गाना सुनाते थे, अपनी कॉम्पोजिशन सुनाते थे, और फिर अम्मी को कहते थे सुनाइए ना कुछ, बेगम साहब कुछ सुनाइए ना। और वो इतने जहन उनका इतना ज़बरदस्त था मदन मोहन जी, उसमें दो चार बार गाने के बाद ही उनके लो दिमाग में वो तर्ज बैठ जाता था। संग ले चल माँ के सवरिया, नदिया के उस पार हमें संग ले चल, ये अम्मी गाती थी एक दादरा, उसी के तर्ज लेके आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।